अक्सर जब हम किसी बीमारी या किसी मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं ना, तो एक तरह की एक सटीकता की उम्मीद होती है हमें।
हाँ बिल्कुल, किसी इंजीनियरिंग की तरह।
बिल्कुल, मान लीजिए अगर किसी की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद रेखा एकदम साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस स्क्रीन की तरफ इशारा करके कह सकता है, देखिए ये रही समस्या और ये रहा इसका इलाज।
हाँ, इंसानों को ना यही स्पष्टता बहुत पसंद है, मतलब चीजें या तो ब्लैक हैं या व्हाइट हैं।
सही बात है,
या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। हम हर चीज को साफ साफ श्रेणियों में बांटना चाहते हैं क्योंकि इससे दुनिया को समझना थोड़ा आसान लगता है हमें।
लेकिन देखिए, समस्या तब आती है जब हम मानव इतिहास या पुरानी भविष्यवाणियों और एक पूरे राष्ट्र के निर्माण की दुनिया में कदम रखते हैं। वहां अचानक वो एक्सरे मशीन वो काम करना बंद कर देती है।
एकदम सही कह रही हैं आप, वहां चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहती।
बिल्कुल नहीं, हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो बहुत ही धुंधला, जटिल और एकदम उलझा हुआ है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय इसी ऐतिहासिक और धार्मिक धुंधलेपन के बीच से रास्ता निकालने के बारे में है।
और ये रास्ता हमें डॉक्टर रॉबर्ट वैनोय के ओल्ड टेस्टामेंट हिस्ट्री के लेक्चर 28 के स्रोतों तक ले जाता है।
हाँ, तो आज हमारा मुख्य फोकस जेनेसिस यानी उत्पत्ति के पुस्तक के उन अध्यायों पर होगा जो जैकब द्वारा अपने बेटों को दिए गए अंतिम आशीर्वाद, जूडा के राजवंश की भविष्यवाणी और जोसेफ के जीवन के जो नाटकीय उतार चढ़ाव है ना, उनसे जुड़े हैं।
बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है ये,
है ना। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे हजारों साल पहले के पारिवारिक संघर्ष, भाई बहनों की आपसी ईर्ष्या और एक पिता की मौत के बिस्तर पर कही गई बातें एक पूरे राष्ट्र के निर्माण का ब्लूप्रिंट बन गई।
और इस चर्चा में सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है कि इतिहास में क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि वो क्यों और कैसे हुआ, कैसे ये प्राचीन ग्रंथ ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टिकोण से आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं।
तो पारिवारिक उत्पत्ति से अगर हम शुरुआत करें तो स्रोत हमें जेनेसिस 49 की ओर ले जाते हैं, जहां जैकब अपनी मृत्यु के करीब है और अपने सभी बेटों को आशीर्वाद देने के लिए पास बुलाता है।
जी,
आमतौर पर हम सोचेंगे कि ये एक बहुत ही भावुक पल होगा जहां एक पिता बस अपने बच्चों को अलविदा कह रहा है।
हाँ, आमतौर पर तो लोग यही सोचते हैं, पर डॉक्टर वैनोय के अनुसार ये कोई साधारण विदाई नहीं थी। इन आशीर्वादों को नूह के आशीर्वाद की तरह ही एक प्रोग्रामेटिक भविष्यवाणी के रूप में देखा जाना चाहिए।
एक सेकेंड, प्रोग्रामेटिक।
हाँ,
ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लग रहा है मुझे।
हाँ,
इसका यहाँ व्यवहारिक मतलब क्या है? क्या वो कोई कंप्यूटर कोड लिख रहा था?
एक तरह से आप कह सकती हैं, हाँ, प्रोग्रामेटिक का मतलब है कि जेकब के शब्द एक कार्यक्रम या एक रूपरेखा सेट कर रहे थे। वो एक पैगंबर के रूप में बोल रहा था उस वक्त।
अच्छा,
वो केवल ये नहीं कह रहा था कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन में खुश रहो, वो ईश्वरीय दृष्टि के माध्यम से ये घोषित कर रहा था कि इसराइल की प्रत्येक जनजाति के वंशजों के साथ भविष्य में असल में क्या होने वाला है, उनका भविष्य कैसा होगा, ये उन शब्दों से एक तरह से प्रोग्राम हो रहा था।
चलिए इसे थोड़ा आधुनिक तरीके से समझते हैं, क्या हम इसे कॉर्पोरेट दुनिया के रूप में देख सकते हैं?
कॉर्पोरेट दुनिया, वो कैसे?
मेरा मतलब है जहां एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ रिटायर होने से पहले अपनी कंपनी का नेतृत्व अपने बोर्ड मेंबर्स को सौंप रहा है। लेकिन यहां बस अंतर ये है कि इस सीईओ के पास भविष्य को देखने की एकदम अचूक दिव्य दृष्टि है।
क्या बात है, ये समझने के लिए बहुत ही अच्छा नजरिया है। और इसी कॉर्पोरेट हैंडओवर में अगर हम आपकी बात को आगे बढ़ाएं, सबसे चौंकाने वाला फैसला जूडा के लिए आता है।
जूडा के लिए?
हाँ, जेनेसिस 49 के 8वें से 12वें श्लोक में हम देखते हैं कि नेतृत्व का यानी जेठा होने का जो अधिकार है वो जूडा को मिलता है। जेकब भविष्यवाणी करता है कि जूडा के भाई उसकी प्रशंसा करेंगे और उसके सामने झुकेंगे। उसे एक शेर के बच्चे के रूप में दर्शाया गया है।
और यहीं पर स्रोत उस पंक्ति का जिक्र करते हैं जिसने पूरी इतिहास की दिशा ही तय कर दी। जैकब कहता है, राजदंड जूडा से दूर नहीं जाएगा।
बिल्कुल।
अब मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन है। राजदंड यानी एक राजा का डंडा, राइट? लेकिन इसराइल में तो राजा बहुत बाद में आए थे ना, सॉल और डेविड के समय में।
हाँ, ऐतिहासिक रूप से वो काफी बाद में आए।
और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, राजा की मांग करने पर इसराइल के लोगों की काफी आलोचना भी हुई थी। तो क्या यहाँ ये राजशाही कोई गलती थी?
यही वो जगह है जहाँ लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि बाद के इतिहास में इसराइल का राजा की मांग करना ईश्वर की योजना के एकदम खिलाफ था।
हाँ, आम धारणा तो यही है।
लेकिन डॉक्टर वैनोय स्पष्ट करते हैं कि राजशाही कभी भी बुरी चीज नहीं थी, ये हमेशा से योजना का एक सकारात्मक हिस्सा थी। राजदंड का जिक्र जो यहाँ जेनेसिस में है, ये साबित करता है।
तो फिर समस्या कहाँ थी?
समस्या राजा होने में नहीं थी, समस्या बाद में लोगों द्वारा गलत कारणों से राजा मांगने में थी। वो अपने आसपास के देशों की नकल करते हुए एक गलत तरह के राजा की मांग कर रहे थे। जूडा के लिए ये भविष्यवाणी सीधे तौर पर उस सही राजशाही की नींव रख रही थी जो अंततः मसीहा की ओर इशारा करती है।
अच्छा, तो ये पहले से ही तय था कि राजशाही आएगी, लेकिन जूडा के इस राजदंड की बात करने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, ये राजदंड कब तक जूडा के पास रहेगा?
बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
और स्रोत हमें जेनेसिस 49 के 10वें श्लोक के उस रहस्यमयी अनुवाद की ओर ले जाते हैं जिसने सदियों से भाषाविदों और बड़े बड़े विद्वानों को उलझा कर रखा है।
इस अनुवाद की बहस को समझना सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि इब्रानी भाषा यानी हिब्रू का मूल पाठ यहाँ काफी जटिल है। किंग जेम्स वर्जन, जिसे हम KJV कहते हैं, उसमें लिखा है कि राजदंड तब तक जूडा के पास रहेगा जब तक शाइलो ना आ जाए।
शाइलो? अब ये शाइलो क्या है? क्या ये कोई जगह है या किसी व्यक्ति का नाम है?
बस इसी पर तो सारी बहस है। एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान है कील, उनका मानना है कि शाइलो इब्रानी भाषा के शब्द शालम से आया है।
शालोम, जिसका अर्थ शांति होता है।
बिल्कुल सही, जिसका अर्थ है शांति या आराम। इसलिए वे शाइलो का अर्थ निकालते हैं शांति लाने वाला, और इसे मसीहा का एक सीधा नाम या उपाधि मानते हैं।
लेकिन फिर मैंने देखा कि NIV यानी न्यू इंटरनेशनल वर्जन, वो इसे पूरी तरह से अलग तरीके से लिखता है, उसमें शाइलो शब्द है ही नहीं।
हाँ, NIV का अनुवाद थोड़ा अलग दिशा में जाता है।
उसमें लिखा है जब तक वह ना आ जाए जिसका यह अधिकार है। ये तो दोनों अनुवादों में बहुत बड़ा अंतर हो गया ना, इसका क्या कारण है?
इसका कारण ये है कि NIV के अनुवादक इब्रानी व्याकरण को एक अलग तरीके से पढ़ते हैं, और वे इसके लिए केवल व्याकरण पर निर्भर नहीं है, वे इतिहास में बहुत आगे एजिकील की पुस्तक की ओर देखते हैं।
एजिकिया, वो कैसे जुड़ता है यहाँ?
एजिकील 21 के 27वें श्लोक में, जब बेबीलोन का आक्रमण होने वाला था और यरूशलेम का विनाश एकदम करीब था, तब भविष्यवाणी की गई थी कि ताज और पगड़ी तब तक हटा दी जाएगी जब तक वो ना आ जाए जिसका इस पर सही अधिकार है।
ओ, तो आप कह रहे हैं कि सैकड़ों साल बाद लिखा गया एजिकील का ग्रंथ एक तरह से जेनेसिस के लिए फैक्ट चेकर का काम कर रहा है। वो पीछे मुड़कर जेनेसिस के उसी वादे की व्याख्या कर रहा है।
आप इसे ऐसे ही समझ सकती हैं। कई विद्वानों का मानना है कि एजिकील का ये श्लोक वास्तव में जेनेसिस 49 के उसी वादे का एक विस्तृत रूप है। और जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि चाहे आप KJV का शाइलो वाला अनुवाद माने या NIV का वो जिसका ये अधिकार है वाला अनुवाद माने, दोनों का मूल अर्थ और दिशा एकदम एक ही है।
मतलब शब्दों की बहस अपनी जगह है, लेकिन जो असली संदेश है वो नहीं बदलता।
बिल्कुल भी नहीं। दोनों ही अनुवाद एक मसीहाई भविष्यवाणी है। दोनों ही उस आने वाले महान राजा की ओर इशारा कर रहे हैं जिसका राजदंड पर वास्तविक अधिकार है। अनुवाद की ये भिन्नता भविष्यवाणी के मसीहाई चरित्र को कमजोर नहीं करती,
बल्कि उसे अलग अलग कोणों से पुष्ट करती है, है ना?
बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने।
ये समझ में आता है, लेकिन मुझे यहाँ एक मिनट के लिए रोकिए। मैं कहानी के पूरे स्ट्रक्चर को देख रही हूँ और मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है यहाँ पर।
कैसा विरोधाभास?
देखिए, अगर जुड़ा को ये राजदंड और भविष्य का इतना बड़ा नेतृत्व मिल गया है, तो कहानी को तो अब जुड़ा पर ही फोकस करना चाहिए ना? लेकिन जेनेसिस की पुस्तक का इतना बड़ा हिस्सा, लगभग 20 अध्याय, अचानक जोसेफ की कहानी पर क्यों केंद्रित हो जाते हैं? ये अचानक से फोकस क्यों बदल गया?
ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और इसका जवाब हमें इब्रानी साहित्य की एक विशेष शैली में मिलता है। ये फोकस बदलना, ये कोई अचानक हुई चीज नहीं है। जेनेसिस 37 के दूसरे श्लोक में टोलेदोत शब्द का प्रयोग हुआ है।
टोलेदोत, इसका क्या अर्थ होता है?
इसका अनुवाद अक्सर पीढ़ियों का वृत्तांत या का इतिहास के रूप में किया जाता है। इब्रानी साहित्य में यह एक बहुत बड़ा संरचनात्मक विभाजन है, मतलब एक स्ट्रक्चरल डिवाइड है। जब यहाँ टोलेदोत आता है तो इसका मतलब है कि कहानी का लेंस बदल रहा है।
मतलब क्या कोई नया चैप्टर शुरू हो रहा है? इसे थोड़ा विजुअल तरीके से समझाइए ना।
हाँ, तो आप इसे एक फिल्म के कैमरे की तरह सोच सकती हैं। अभी तक कैमरा जेकब और उसके व्यक्तिगत परिवार पर एकदम क्लोजअप में था।
अच्छा,
लेकिन टोलेदोत के आते ही कैमरा जूम आउट करता है और एक बहुत बड़ा पैनोरामिक शॉट लेता है। अब फोकस जेकब के व्यक्तिगत जीवन से हटकर उस पूरे राष्ट्र के निर्माण पर चला गया है जो मिस्र में आकार लेने वाला है।
ओ, मैं समझ रही हूँ।
और उस राष्ट्र को मिस्र तक ले जाने और वहां बचाने का माध्यम जोसेफ था, इसलिए कहानी पूरी तरह से जोसेफ पर केंद्रित हो जाती है।
और ये कहानी दुनिया के साहित्य की सबसे नाटकीय कहानियों में से एक है। मतलब एक ऐसा भाई जिसे उसके ही भाइयों ने ईर्ष्या के कारण बेच दिया, जो मिस्र में गुलाम बना, फिर झूठे आरोपों में जेल गया और फिर रातों रात मिस्र के राजा फिरौन के सपनों का अर्थ बताकर सत्ता के एकदम शिखर पर पहुंच गया।
और यहां भी केवल सपनों का अर्थ बताना काफी नहीं था उसके लिए। 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें, जो 7 साल की प्रचुरता और 7 साल के अकाल का प्रतीक थी। जोसेफ ने केवल भविष्यवाणी नहीं की, उसने फिरौन को एक पूरी आर्थिक और प्रशासनिक योजना दी कि उस भयंकर अकाल से कैसे निपटना है।
लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता कितना अजीब था। जेल में जोसेफ राजा के कप बियरर और बेकर से मिलता है।
जी,
वो कप बियरर का सपना सच बताता है कि वो अपनी नौकरी पर वापस जाएगा, और जोसेफ उससे बस एक ही विनती करता है कि भाई मुझे याद रखना और मेरी बेगुनाही साबित करके मुझे यहाँ से बाहर निकालना।
लेकिन वो इंसान बाहर जाते ही सब भूल जाता है।
ये तो वैसा ही हुआ जैसे आप किसी बहुत बड़े नेटवर्किंग इवेंट में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद करें, उसका कोई बहुत बड़ा काम सुलझा दें और वो कहे कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में सबसे ऊंचे पद के लिए रेफर कर दूंगा।
हाँ, और फिर?
और फिर वो आपका ईमेल एड्रेस ही भूल जाए। बस जोसेफ के मामले में इस भूलने की कीमत बहुत भारी थी। उसे 2 और साल उस अंधेरी जेल में सड़ना पड़ा। क्या हम इसे सिर्फ जोसेफ की बदकिस्मती कहेंगे?
अगर हम इसे व्यापक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें ना, तो ये कोई बदकिस्मती नहीं थी। ये छोटी सी लगने वाली मानवीय भूल ईश्वरीय योजना का, यानी प्रोविडेंस का एक बहुत ही सटीक हिस्सा थी।
कैसे? 2 साल बिना बात के जेल में रहना कैसे कोई योजना हो सकती है?
सोचिए, अगर कप बैरर ने जोसेफ को तुरंत याद रखा होता और उसे जेल से निकाल दिया होता,
हाँ,
तो जोसेफ क्या करता?
शायद वो घर चला जाता।
बिल्कुल, वो शायद पहली फुर्सत में मिस्र छोड़कर अपने घर वापस कनान लौट जाता। लेकिन वो 2 साल की देरी ये सुनिश्चित करती है कि जोसेफ ठीक उसी समय जेल से बाहर आए और फिरौन के सामने पहुंचे जब अकाल पड़ने वाला था।
वाओ,
ये टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि उसी समय मिस्र को और अंततः जोसेफ के अपने परिवार को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी।
ये टाइमिंग सच में हैरान करने वाली है। जोसेफ ने जिस तरह से अकाल के दौरान अपने परिवार को बचाया और जिस तरह उसने अपने भाइयों को माफ किया, उससे कई लोग उसे एक परफेक्ट इंसान मान लेते हैं। कई विद्वान तो उसे ईसा मसीह के एक सीधे प्रतीक या टाइप के रूप में देखने लगते हैं।
ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा सावधान रहना चाहिए। डॉक्टर वेनॉय के व्याख्यान में डच विद्वान एनएच रिडर बोस का हवाला दिया गया है, जो इस अति उत्साह पर कड़ी चेतावनी देते हैं। रिडर बोस बताते हैं कि न्यू टेस्टामेंट कभी भी कहीं भी सीधे तौर पर जोसेफ को ईसा मसीह का प्रतीक या टाइप नहीं कहता है।
तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जोसेफ और मसीह की कहानी में कोई समानता नहीं है? अपमान सहना, फिर सत्ता में आना, अपने लोगों को बचाना, ये सब तो एक जैसा ही लगता है ना?
समानताएं निश्चित रूप से हैं। अपमान और फिर उत्थान का जो पैटर्न है वो बहुत स्पष्ट है। लेकिन रिडर बोस का कहना है कि हमें इसे एक चरम रूपक या एक्सट्रीम एलिगरी बनाने से बचना चाहिए।
चरम रूपक बनाने का क्या नुकसान है?
नुकसान ये है कि हमें हर छोटी चीज में समानता ढूंढने की जबरदस्ती कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जोसेफ की असलियत को नजरअंदाज कर देंगे। जोसेफ कोई निष्पाप इंसान नहीं था।
जोसेफ की कमियां? हम तो हमेशा उसे एक हीरो की तरह देखते आए हैं। स्रोतों में ऐसा क्या है जो उसकी कमियों को उजागर करता है?
अगर आप जेनेसिस 37 को ध्यान से पढ़ें, तो 17 साल की उम्र में जोसेफ का व्यवहार बहुत परिपक्व नहीं था। वो अपने भाइयों की चुगली करने वाला था। वो अपने पिता को अपने भाइयों की बुरी रिपोर्ट देता था।
और उसके वे सपने जहां उसके भाई और माता पिता उसके सामने झुक रहे हैं?
बिल्कुल, वे सपने सच थे और भविष्यवाणियां की, लेकिन जिस तरह से जोसेफ ने उन्हें अपने भाइयों को सुनाया, उसमें काफी अहंकार झलकता था। उसने ये नहीं सोचा कि उसके भाई कैसा महसूस करेंगे।
मतलब वो कोई ऐसा सुपरहीरो नहीं था जिसमें कोई खामी ना हो, बल्कि वो एक घमंडी टीनेजर था जो अपने भाइयों को चिढ़ा रहा था।
हाँ, और इसी रवैये ने उसके भाइयों की नफरत की आग में घी डालने का काम किया। ईश्वर ने जोसेफ का इस्तेमाल एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए किया, लेकिन वो एक इंसान ही था अपनी मानवीय कमियों के साथ।
और अगर हम मानवीय खामियों की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें वापस जूडा की ओर लौटना ही होगा। ये हिस्सा मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा परेशान करता है।
जूडा का हिस्सा?
हाँ, अगर जोसेफ अपनी खामियों के बावजूद इतना प्रमुख हो गया और उसने अकाल में सबको बचाया, तो उस जूडा का क्या हुआ जिसे राजदंड मिला था? क्योंकि स्रोत हमें इतिहास के एक बहुत ही डार्क और अनकम्फर्टेबल मोड पर ले जाते हैं यहाँ से।
ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। आपको याद होगा कि जैकब की पत्नियों लिया और रेचल के बीच हमेशा एक तनाव रहता था।
हाँ, वो जो सिस्टर राइवलरी थी।
बिल्कुल, लिया का बेटा जूडा था और रेचल का बेटा जोसेफ। जब भाइयों ने जोसेफ को मारने की योजना बनाई तो वो जूडा ही था जिसने कहा, इसे मारने से क्या फायदा, चलो इसे बेच देते हैं और पैसे कमाते हैं, जबकि बड़ा भाई रूबेन उसे बचाना चाहता था।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जेनेसिस का अध्याय 38 तो पूरी तरह से जूडा के नैतिक पतन की कहानी है। ये कहानी जोसेफ की कहानी के ठीक बीच में क्यों आती है?
ये साहित्यिक संरचना का, लिटररी स्ट्रक्चर का एक मास्टर स्ट्रोक है। जेनेसिस 37 में जोसेफ को बेचा जाता है। जेनेसिस 39 में जोसेफ मिश्र में पोतीफर की पत्नी के प्रलोभन का बहादुरी से सामना करता है और अपने चरित्र को बनाए रखता है।
और उन दोनों के बीच में,
इन दोनों के ठीक बीच में अध्याय 38 में जूडा की कहानी है,
जहां जूडा अपनी बहू तमार के साथ एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति में पाया जाता है। वो अपनी बहू को एक वैश्या समझ बैठता है और उसके साथ संबंध बनाता है। यहाँ जूडा का कैरेक्टर पूरी तरह से गिर जाता है। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे आप गर्व से सुनाएंगे। तो इस कहानी को इतने महान माने जाने वाले ग्रंथ में रखा ही क्यों गया है?
क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सच उजागर करती है। ये जोसेफ की नैतिक दृढ़ता और जूडा की नैतिक विफलता के बीच एक सीधा कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। लेकिन सबसे बड़ा सदमा तब लगता है जब हम देखते हैं कि इस भयानक और पापपूर्ण स्थिति का परिणाम क्या होता है।
परिणाम,
जूडा और तमार के संबंध से पेरेस का जन्म होता है।
और पेरेस कोई आम नाम नहीं है इतिहास में।
बिल्कुल नहीं। अगर आप इतिहास की वंशावली को आगे पढ़ें तो पेरिस वही कड़ी है जो जूडा के वंश को आगे बढ़ाती है। राजा डेविड और अंततः मसीहा की वंशावली सीधे इसी पेरिस से होकर गुजरती है।
यह तो सच में दिमाग को सुन्न कर देने वाला है। जोसेफ, जिसने हर परीक्षा पास की, प्रलोभन से बचा, परिवार को बचाया, उसके वंश को राजशाही नहीं मिली, बल्कि जूडा, जिसने अपने भाई को बेचा और अपनी बहू के साथ इतना बड़ा पाप किया, उसके वंश को चुना गया। ये तो किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं लगता मुझे।
यही वो बिंदु है जहां ऐतिहासिक तथ्य और धार्मिक दर्शन आपस में टकराते हैं। स्रोत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि ईश्वर की योजनाएं इंसानों की नैतिक सिद्धता पर निर्भर नहीं करती। यह दिखाता है कि कैसे मानवीय पापों, विफलताओं और सबसे अंधेरे क्षणों के बावजूद इतिहास अपनी दिशा में आगे बढ़ता रहता है। महान ऐतिहासिक उद्देश्य अक्सर सबसे टूटे हुए और दागदार लोगों के माध्यम से पूरे होते हैं।
ये सुनकर मुझे एक बात याद आ रही है। ये एक ऐसी बुनाई या टैपेस्ट्री की तरह है जिसे अगर आप पीछे से देखें तो आपको केवल धागों का उलझा हुआ गंदा और बेतरतीब गुच्छा दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बस धागे फेंक दिए हैं, कोई डिजाइन ही नहीं है।
हाँ, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या बन रहा है।
लेकिन जब आप उसे पलट कर सामने से देखते हैं तो वो एक बहुत ही जटिल और परफेक्ट मास्टरपीस होता है।
ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। जोसेफ ने परिवार को अकाल से बचाया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अस्थायी भूमिका थी। लेकिन दूसरी ओर जूडा, अपनी सभी भारी नैतिक खामियों के बावजूद, वो धागा बना जिससे भविष्य की राजशाही का पूरा चित्र बुना जाना था।
तो आज की इस गहन चर्चा में हमने सचमुच इतिहास के उन उलझे हुए धागों को सुलझाने की कोशिश की है। हमने देखा कि कैसे जैकब के वो भविष्य सूचक आशीर्वाद केवल शब्द नहीं बल्कि पीढ़ियों का ब्लूप्रिंट थे। हमने शायलो के उस रहस्यमय अनुवाद पर चर्चा की जो एजिकियल के ग्रंथों से जुड़कर एक आने वाले महान शासक की पुष्टि करता है
जी।
हमने टोलेडोत के माध्यम से जोसेफ की नाट्य कहानी में प्रवेश किया और समझा कि कैसे उसकी मानवीय कमजोरियां भी एक बड़ी योजना का हिस्सा थीं। और सबसे बढ़कर हमने जूडा के उस गहरे नैतिक पतन को देखा जिसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतिहास कैसे सबसे अप्रत्याशित रास्तों से होकर गुजरता है।
इस स्रोतों का सबसे बड़ा सबक यही है कि इतिहास कभी भी एक सीधी, साफ और बिना दाग वाली रेखा में नहीं चलता।
जाते जाते हमारी इस चर्चा के अंत में मैं स्रोत सामग्री से लिया गया एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर हमने अभी तक गहराई से चर्चा नहीं की है। डॉक्टर वेनॉय ने अपने लेक्चर के अंत में इस राजशाही के वादे पर एक बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी की थी।
हाँ, वो साम्राज्य वाली बात।
उन्होंने कहा कि मसीह के आने से वो राजशाही, वो साम्राज्य स्थापित तो हो गया, लेकिन यह एक आध्यात्मिक रूप में था। उन्होंने इसे एक बहुत ही विरोधाभासी लेकिन गहरे वाक्य में वर्णित किया, पहले से ही यहाँ है लेकिन अभी पूरी तरह से आना बाकी है।
अंग्रेजी में कहें तो ऑलरेडी बट नॉट येट।
जी हाँ,
यह सोचने का विषय है कि किसी ऐसे ऐतिहासिक वादे या वास्तविकता के बीच जीने का असल मतलब क्या होता है, जो शुरू तो हो चुका है, जिसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है, लेकिन जिसका अंतिम और सबसे भव्य रूप अभी भी भविष्य के गर्भ में कहीं छिपा है।
शुरुआत में हमने उस एक्सरे मशीन की बात की थी ना?
बिल्कुल। आज हमने ये सीखा कि प्राचीन इतिहास और भविष्यवाणियों की ये कहानी कोई साफ एक्सरे रिपोर्ट नहीं है। ये तो इंसानी गलतियों, धुंधले निशानों और धीरे धीरे खुलने वाले रहस्यों से भरी एक ऐसी यात्रा है जिसका अंतिम पन्ना अभी भी लिखा जाना बाकी है। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।